मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 13 जून 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं श्रीपाल सिंह जो जोधपुर राजस्थान से हैं, सत्यवान कुमार अब भागलपुर बिहार से हैं, प्रियंका कुमारी अरवल बिहार से हैं और पीयूष तिवारी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। श्रीपाल, सत्यवान, प्रियंका और पीयूष, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, दो दिन के रेस्ट के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप सब एक नई ताजगी के साथ आने वाले सप्ताह का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। और अब जो 6 दिन रह गए हैं जिसमें मैं सैटरडे को शामिल करके चलता हूं, आप लोगों की पढ़ाई के मामले में 5 डेज वीक का सिद्धांत लागू नहीं किया जाना चाहिए। इनका आप भरपूर उपयोग करेंगे, पूरे उत्साह से आप इसे अपने लिए उपयोगी बनाएंगे और हमेशा ताजे बने रहेंगे, साथ ही खुश मिजाज भी। तो मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं अब शुरुआत करता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से की से। मेरे पास एक मेल आया है और बड़ा अच्छा मेल आया है। उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया अपने ही तय लेकर के कि पहले वो एक सामान्य सी थी, इसके बाद वो फिर टीचर हो गई, टीचर होने के बाद उनके व्यवहार में, उनको स्वयं अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ा, उस चीज को लेकर के कभी कभी उन्हें तकलीफ भी होती है। फिर उनका जो प्रश्न है वो कुल मिलाकर के यह है कि जैसे ही व्यक्ति को कोई पद प्राप्त होता है तो उस फिर पद के प्राप्त होते ही उसके व्यक्तित्व की जो सरलता और सहजता रहती है वो कहीं गायब होने लगती है। धीरे धीरे कृत्रिमता आ जाती है, जिसे आप बनावटीपन कहते हैं, ईगो आ जाता है। तो उन्होंने ये जानना चाहा है कि ये कितना सही है, कितना गलत है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं। मैं उनके द्वंद को समझ सकता हूं, उनकी परेशानी को समझ ही नहीं सकता बल्कि महसूस भी कर सकता हूं। तो मित्रों, मैं आज इसी टॉपिक पर आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, ये जो संकट है सच पूछे तो आदमी के, हम सब के ईगो से जुड़ा हुआ संकट है और ये संकट हमारे समाज की देन है। जैसे अगर हम डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं तो डेवलप्ड कंट्री में मैंने देखा है कि इन सब चीजों की बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। आप किसी पद पर पहुंच जाइए, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाइए या आपके पास बहुत अधिक पैसा हो जाए, तब भी वहां आपको एक सामान्य नागरिक की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और इसके ठीक वाइस वर्सा, यदि आप कुछ नहीं है तब भी आपकी जो समाज में जो वक्त होगी, एक ह्यूमन डिग्निटी जो होती है, ह्यूमन डिग्निटी के तहत आपको सम्मान मिलता है बींग ए ह्यूमन बींग, कि आप मनुष्य हैं और यही सबसे बड़ा पद है। वो इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, वो मैंने खुद देखा है। लॉस एंजलिस में हम लोग काफी दिन रहे, वहां हम लोग रात में जहां जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, लॉस एंजलिस की मैं वो जगह बता रहा हूं जहां पर ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, उस हॉल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। और उस रेस्टोरेंट में वहां के जो स्टार्स होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस सेलिब्रिटीज, वो अक्सर आते रहते हैं और पब्लिक भी वहां आती रहती है। तो वहां आते हैं लोग, देखते हैं, करते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं कि ऑटोग्राफ लेने के लिए बिल्कुल जूझे पड़े हैं और उत्सुकता बनी हुई है, कुछ नहीं। वो भी आते हैं काम लोगों की तरह और खाकर चले जाते हैं। और बट नेचुरल है कि चूंकि वो सेलिब्रिटी हैं तो उनकी तरफ एक बार लोगों की नजर उठेगी। हो सकता है कि वो अभी तक किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे लेकिन अब वो सेलिब्रिटी के टॉपिक पर बात करने लगे, और वहां तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा जुनून नहीं है कि बिल्कुल उस पर मक्खियों की तरह झूम ही पड़े। तो वो एक अलग तरीके का समाज है। जब हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ जाते थे तो मुझे वो घटना बड़ी अच्छे से याद आ रही कि पुर्तगाल की घटना है। पुर्तगाल में हमें उस स्थान पर जाना था जहां से वास्को डी गामा ने अपने भारत यात्रा के अभियान की शुरुआत की थी। वहां एक बहुत बड़ा स्मारक सा बना हुआ है, उस जगह पर जाना था, वो समुद्र के किनारे है। तो हम लोग गए, पुर्तगाल के राष्ट्रपति भी थे, लेकिन समुद्र के किनारे की जो दूसरी पब्लिक थी, छुट्टी का दिन था, काफी भीड़ थी, वो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया, वो उसी तरह से अपने में मगन थे। हम लोग भी गए, हम लोग के साथ थोड़ा सा तामझाम था ही, लेकिन वहां के लोगों में ऐसी कोई उत्सुकता नहीं थी कि देखें कौन आया है, क्या हो गया है। तो मित्रों, वहां का समाज इस तरीके का समाज है और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बेहतर समाज है। मैं इस रूप में तो इसे बेहतर मानता हूं, इस रूप में मैं कह रहा हूं बेहतर मानता हूं, क्योंकि वहां जो ह्यूमन डिग्निटी है उसकी सबसे ज्यादा वक्त है। इसका मतलब यह मत समझिएगा कि उन समाजों में फिर आदमी कुछ हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वहां उनको कोई अतिरिक्त सम्मान नहीं मिलता है, ऐसा भी नहीं है। सबसे ज्यादा कोशिश वहां के लोग करते हैं, जूझे पड़े रहते हैं, वो सम्मान के लिए नहीं करते, वो अपने जीवन की गुणवत्ता के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं, अपनी पहचान के लिए करते हैं, और वहां उनको पहचान मिलती है। ऐसा नहीं है कि पहचान नहीं मिलेगी, जैसे मैंने हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस की बात की तो उन पर मैगजीन्स निकलती हैं, उन पर किताबें निकलेंगी, उनके उन पर अखबारों में खबरें छपेंगी, उन पर डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बनेंगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जो आम आदमी है उसकी भी अपनी बहुत बड़ी पहचान है, उसका भी अपना एक सम्मान है, तो वो समाज है। दूसरी तरफ क्या है, हालांकि वो भी समाज एक समय में फ्यूडल रहा है, जो डेवलपिंग कंट्री खासकर एशियन कंट्रीज के जो समाज है वो फ्यूडल सोसाइटी है। फ्यूडल सोसाइटी का मतलब है सामंतवादी समाज, है ना। सामंतवाद आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारत की तो का तो पूरा का पूरा समाज सामंतवादी समाज रहा है, और आजादी के बाद भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है उसने सामंतवाद को तो खत्म कर दिया है, लेकिन जो उसकी प्रवृत्तियां हैं आज भी उसी रूप में मौजूद हैं। तो ये जो सामंतवादी समाज होता है ये श्रम को बहुत हेय दृष्टि से देखता है, श्रम को महत्व नहीं देता, है ना। ये आदेश को महत्व देता है, कमांड को महत्व देता है। जैसे मान लीजिए कि मैं जमींदार हूं और मेरे अंडर में 100 200 500 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं उनको आदेश दे रहा हूं, मैं खुद काम नहीं कर रहा हूं, काम करा रहा हूं, तो काम कराने वाला यहां बड़ा व्यक्ति है और जो काम करते हैं उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये सामंती समाज की एक चेतना होती है। हमारा समाज अभी भी उससे उबर नहीं पाया है, इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहां मजदूर है, किसान है। अब किसान तो समझिए कि एक तरह से अन्नदाता है, लेकिन आप उन्हें कोई बहुत सम्मान की निगाह से नहीं देखते कि यार ये कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई छोटा सा भी सरकारी कर्मचारी हो जाए, अधिकारी तो बहुत बड़ी चीज है, तो अपने ही समाज में वो बिल्कुल ऊपर की स्थिति में पहुंच जाएगा। अच्छा, ये सरकारी आदमी है, मतलब सरकारी आदमी मतलब अब इसको काम वाम नहीं करना पड़ेगा ना, इसके पास अधिकार है। तो जो भारतीय जैसा सामंती समाज है वो अधिकारों को बहुत तरजीह देता है। तो मित्रों, ये जो मैंने दो समाज की बात बताई, तो हमारी जो चेतना बनी है, जो हमारा जो कॉन्शियस है जिसका निर्माण हुआ है, वो हमारे समाज से होता है, हमारे परिवार से होता है, हमारे संस्कारों से होता है। तो हमारे विचारों में, हमारी चेतना में, हमारे संस्कारों में वो सामंतवादी बीज मौजूद हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही हम शिफ्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक आम आदमी हूं, बहुत आम आदमी, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करता रहा, वो सब होता रहा, जैसे ही मैं थोड़े से भी पद पर पहुंच गया, मान लीजिए कि मैं पटवारी बन गया, मान लीजिए कि मैं टीचर ही बन गया, या जरा सा भी मुझे पद मिल गया, तो तुरंत मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब यहां गांव के जितने लोग हैं या शहर के जितने लोग हैं या मेरे परिवार में जितने लोग हैं उन सब से मैं ऊपर उठ गया, उन सब में मैं विशिष्ट बन गया। तो मित्रों, जैसे ही हमारे दिमाग में विशिष्ट बनने की चेतना आती है कि आई एम समथिंग स्पेशल, समथिंग यूनिक, दूसरों से हम तुलना करते हैं तो इनसे हम अपने को विशिष्ट समझने लगते हैं। तो जब हम विशिष्ट समझने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग में फिर ये ख्याल आएगा कि यार अगर हम विशिष्ट बन गए हैं तो हमारे चाल ढाल, बात व्यवहार, खान पान में भी तो कुछ विशिष्टता होनी चाहिए। अगर हम पहले जैसे ही रहे, इन्हीं जैसा सब बात व्यवहार करते रहे, इन्हीं के बीच उठते बैठते रहे, खाते पीते रहे, तो फिर हमको विशिष्ट समझेगा कौन? फिर तो ये मान करके चलेंगे कि ये भी हमारे जैसा है। तो ये जो सोच है सबसे खतरनाक चीज मित्रों, अब मैं जिस पॉइंट पर आ रहा हूं वो यही है कि ये जो खतरनाक सोच है कि हमें विशिष्ट बनना है क्योंकि मैं कुछ हो गया हूं, ये फिर हमें आर्टिफिशियल की तरफ लेता चला जाता है, कृत्रिमता की तरफ लेता चला जाता है, और हमारा जो व्यक्तित्व है वो सरल की जगह जटिल और सहज की जगह असहज होना शुरू हो जाता है। अब हम ये बात भूल चुके होते हैं कि कौवा चले हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। पीठ पीछे लोग इन बातों की चर्चा भी करते हैं लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे सामने सभी हमें विशिष्ट मान करके हमारी तारीफ करते रहते हैं। चूंकि सामने हमारी तारीफ हो रही है, सच पूछे तो इसके कारण हमें सच्चाई का कभी पता भी नहीं लगता, और सच पूछे तो अगर हम पता भी लग जाए ना तो हम अपनी इस विशिष्टता को एंजॉय करते हैं, इसका हमें स्वाद मिलता है, एक टेस्ट महसूस होता है, कह लीजिए कि अपने प्रति एक प्राउड फील होता है, एक गर्व की भावना पैदा होती है, अपने से मोह हो जाता है, अपने प्रति प्रेम बढ़ जाता है। और ये बड़ी चीज है, अपने प्रति प्रेम का बढ़ना, अपने प्रति मोह होना, इसे मैं गलत नहीं मानता, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ये एक अच्छी चीज है। ये बात अलग है कि उसका आधार कितना सही है, इन चीजों के आधार पर कॉन्फिडेंस बढ़ना, ये जो आधार है इस आधार को मैं भले ही सही न मानूं लेकिन जो चीज हो रही है वो तो डेफिनेटली सही है। अब यहां मित्रों मैं एक बात आपसे थोड़ा सा इसी से जुड़ी हुई कहना चाहूंगा कि देखिए, ये तो एक बात हुई जो हमने अपने को विशिष्ट मानकर अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। एक दूसरी बात यहां होती है दोस्तों, उसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे ही आपको कोई पद मिलता है, वैसे ही अगर वो सरकारी पद है या कोई भी है समझ लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से पब्लिक पर्सनालिटी बन जाते हैं, है ना, एक सार्वजनिक व्यक्तित्व बन जाते हैं। आपकी तरफ लोगों की निगाहें उठने लगती हैं, आपके बारे में लोग बातचीत करने लगते हैं, आप दूसरों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले व्यक्तित्व के रूप में इमर्ज होने लगते हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपकी बातों को महत्व देते हैं, यहां तक कि बहुत से लोग आपका अनुकरण करते हैं, आपकी सफलताओं के कहानी किस्से आपके गांव और शहर के लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि उसको देखो। इसका मतलब है कि आप विशिष्ट तो बन गए और वो इसे स्वीकार भी कर रहे हैं, करेंगे ही, ये होता ही है। तो अब यहां क्या होता है कि जो पद आपको मिला है, आपके सामने चुनौती ये होती है कि आप उसके अनुकूल, उसकी गरिमा के अनुकूल स्वयं को ढालिए। जब मैं गरिमा के अनुकूल स्वयं को ढालने की बात कह रहा हूं मित्रों, तो ये चरित्र और शिष्टाचार से जुड़ी हुई बात है। जैसे मैंने कहा कि अब आप पब्लिक पर्सन बन गए हैं, है ना, सार्वजनिक व्यक्तित्व बन गए हैं, लोक व्यक्तित्व बन गए हैं, तो सीधी सी बात है कि अब आपको अपने व्यक्तित्व को भी गरिमापूर्ण बनाना होगा। तो अब आपकी बातचीत में एक सोबरनेस होना चाहिए, उसमें जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, आपका जो आचरण है, जो बात व्यवहार है, वो अप टू द मार्क होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्योंकि अब आपका लोग अनुकरण कर रहे हैं, तो आपके बात व्यवहार, आपके जो आचरण है वो ऐसे हों जो पब्लिक के नैतिकता के मापदंडों पर खरे उतरते हों। अब आप पहले जैसी लिबर्टी नहीं ले सकते, जैसे मान लीजिए कि बहुत से लोगों को, मान लीजिए कि अभी तक आप मस्ती में रहते थे, लफाड़ूपने में दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट, लेकिन अब आप अगर टीचर बन गए हैं तो स्वाभाविक है कि अब आप उन चीजों को नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, अगर आप करते हैं तो आलोचना होगी। इसको आपको अंतर करके देखना होगा। तो यदि आप उन चीजों को छोड़ रहे हैं, उन गलत आचरणों को छोड़ रहे हैं, अपने मैनर्स को अच्छा बना रहे हैं, बातचीत करने के लहजे को सभ्य सुसंस्कृत कर रहे हैं, तो ये सरलता और सहजता के विरोध में जाना नहीं हुआ, है ना, ये अपने को काट छांट करके बेहतर बनाना हुआ, ये कृत्रिमता भी नहीं हुई। जो सरलता और सहजता जो खत्म होती है, याद रखिए, वो ईगो से खत्म होती है, ईगो से। और जैसे ही ईगो आएगा तब आप क्या होगा मालूम है, अब आपको अपने ही लोग बेकार लगने लगेंगे, आप उनकी अवहेलना करने लगेंगे, उनको बिल्कुल भी वक्त नहीं देंगे, लगेगा ये सब तो यार ऐसे घास फूस है, मैं विशेष हूं। वो जो प्राउड है, जो घमंड है, वो सबसे खतरनाक बात होती है मित्रों। अब चूंकि वक्त हो चला है, यहां पर इस बात को मैं इसके साथ समाप्त करना चाहूंगा। बशीर बद्र जी हमारे भोपाल के ही बहुत बहुत नामी शायर हैं, मतलब हिंदुस्तान में उनका नाम है। उन्होंने इस पर कुछ बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं, आप इसको सुनिए, आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा, थोड़ा सा लाइफ मैनेजमेंट का कुछ टेस्ट भी बदलेगा। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां से मदीना दिखाई न दे। मैं फिर से दोहराता हूं दोस्तों कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां से मदीना दिखाई न दे, जहां से मदीना दिखाई न दे और सिवा अपने कोई कुछ दिखाई न दे। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब हम किसी अधिकार पद के मत में, एक प्रमाद में कह लीजिए, उसके एक नशे में चूर होकर के अपने तक ही सीमित हो जाते हैं, तब वो कृत्रिमता सहजता खत्म हो जाती है और फिर जहां से मदीना दिखाई न दे, मैं अपने को ही भूल जाऊं, मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए, ऐसा जन्नत नहीं चाहिए, ऐसा अधिकार नहीं चाहिए कि मैं अपने ही लोगों को भूल जाऊं, मदीने को ही भूल जाऊं। हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे दोस्त, ये सब तो हमारे लिए मदीना ही हैं, हमारे अपने लोग हैं, इनके बीच में हम रहे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, इन लोगों ने हमको पालने में, बड़ा करने में बड़ा योगदान दिया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। और अब जब हम कुछ बन गए हैं तो हम इन्हीं की अवहेलना कर रहे हैं, तो हे भगवान मुझे ऐसी खुदाई मत देना। कितने खूबसूरत अंदाज में बशीर बद्र जी ने अपने इस बात को रखा है। तो मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट में मैंने आपसे थोड़ी सी ये चर्चा की। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। मित्रों, कल के AIR न्यूज में के माध्यम से मैं एक दो चीजें आपसे चर्चा करना चाहूंगा, एक दो इशू पर। एक, आपने देखा कि अमेरिका के ऑरलैंडो शहर में जो घटना हुई है वो आप लोगों ने न्यूज में भी सुना और आज अखबारों में भी वो न्यूज है। दोस्तों, एक इत्तफाक है कि ऑरलैंडो शहर का नाम आया और हम लोग ऑरलैंडो गए भी थे, ऑरलैंडो में हम लोग कुछ दिन रहे भी थे। वहां बहुत बड़ा डिज्नीलैंड का बहुत ही फेमस है, और बेसिकली ऑरलैंडो तो वैसे छोटा सा शहर है लेकिन वो अमेरिका के टूरिस्ट प्लेस के नाम के लिए बहुत फेमस है। मतलब वहां इतने होटल हैं, केवल टूरिस्ट के दम पर चलते हैं, वहां की पूरी इकोनॉमी केवल टूरिस्ट पर ही चलती है। और यहां से लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी पर ही समझ लीजिए कि नासा है, वहां भी हम लोग होकर आए थे, छोटा सा शहर है। वहां की घटना आपने सुनी। मित्रों, इसके आधार पर अब ये घटना है, घटना अपने आप में ठीक है, घटना हो गई, बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूं कि इस तरह की घटनाओं पर सीधे सीधे प्रश्न नहीं बनते हैं, इस तरह की घटनाएं हमारे लिए केवल एक उदाहरण का काम करती हैं, कंटेंट का काम करती हैं। जब हम किसी भी बात को एनालिटिकल तरीके से रखना चाहते हैं या उदाहरण के द्वारा प्रमाणित करना चाहते हैं तो इस तरह की घटनाएं हमारे काम आती हैं। आपने सुना कि ये एक नाइट क्लब में हुआ है, तो इसे अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि कोई आतंकवादी गतिविधि इसमें शामिल है। अखबारों में अभी जो पढ़ने को मिल रहा है वो एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया प्रतिशोध है, जो भी है ये एक अलग चीज होगी। लेकिन मैं इसके द्वारा जो बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं मित्रों, वो रखना चाह रहा हूं, वो ये है कि आप देखें कि नो डाउट कि आज अमेरिका जो है एक तरह से कह लीजिए कि विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राजनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, और सच पूछे तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी। जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत से विचारक इस ग्लोबलाइजेशन को बेसिकली अमेरिकाइजेशन मानते हैं, कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरे विश्व का अमेरिकीकरण हो रहा है। जब हम ग्लोबल कल्चर की बात करते हैं, विश्व संस्कृति की बात करते हैं, तो फिर से वहां एक आलोचना होती है कि बेसिकली जो अमेरिका की संस्कृति है वही विश्व संस्कृति है। मतलब जो अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव पूरी दुनिया पर इतने जबरदस्त रूप से पड़ रहा है कि हर दुनिया चाह रही है कि वो अमेरिका बन जाए। अर्थव्यवस्था पर यूएस का कमांड है ही, राजनीति पर आप देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ इस तरीके से लिया जाता है जैसे कि वो दुनिया के राष्ट्रपति हो, और ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या व्यक्ति या कोई राष्ट्र अपनी सॉवरेंटी को सरेंडर कर रहा है, लेकिन धीरे 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 ये चीजें प्रिवेल होती जा रही हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो अमेरिका इतनी बड़ी ताकत बन करके उभरा तो वो आज तक अपनी स्थिति को बनाए हुए है। मित्रों, इसी का एक आधार है क्लैसेस ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैसेस ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब है कि संस्कृतियों के बीच का टकराव। एक किताब आई थी सन क्लैसेस ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें यह बताने की कोशिश की गई थी कि विश्व के तीन चार जो महान संस्कृतियां हैं, जो धर्म है बेसिकली, उनमें आपस में आगे चलकर बहुत जबरदस्त टकराव होगा। तो अब जैसे कि ट्विन टावर का कांड हुआ अमेरिका में, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया, या जो आईएसआईएस जैसे जो शक्तियां, आतंकवादी शक्तियां जो उभर रही हैं, कभी वो फ्रांस में कांड कर रही, कहीं बेल्जियम में कांड कर रही हैं, आप देख रहे हैं कि ये सब चीजें कितने बुरी तरह से आतंकवादी गतिविधियां जो फैलती चली जा रही हैं। बहुत से विचारक इसको एक तरीके से क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम भी मानते हैं। तो ये एक अपना अपना एक ओपिनियन है। अब मित्रों, जब हम अमेरिका को विश्व संस्कृति का केंद्र मान रहे हैं, या कह लीजिए कि एक मार्गदर्शक मान रहे हैं, आर्थिक स्थिति का एक मापदंड मान रहे हैं, हर देश चाह रहा है कि हम अमेरिका जैसे हो जाएं, तो फिर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका अभी क्या है, अमेरिका की आंतरिक स्थितियां क्या हैं। मित्रों, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है नाइट क्लब जितनी, लेकिन इससे पहले भी आपने इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं सुनी है। यहां तक कि स्कूलों में, स्कूल के बच्चे, चलिए ये तो जवान है, वहां से युवा है, स्कूल के बच्चे जाते हैं और क्लास में फायरिंग कर देते हैं। इस तरह की घटनाएं अमेरिका में बहुत आम सी लगभग होने लगी हैं। यही कारण था कि बराक ओबामा जी ने लगभग एक डेढ़ साल पहले एक वो बिल लेकर के आए थे जिसमें एक पर्टिकुलर एज से कम उम्र के बच्चों को के अपने पास पिस्तौल वगैरह रखना, हथियार रखना पर पाबंदी लगाई जाने वाली थी। लेकिन वहां जो हथियार बनाने वाली जो लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि उस बिल को पारित होने नहीं दिया गया, क्योंकि अगर वो बिल पारित हो जाता तो हथियारों की बिक्री कम हो जाती, और हथियारों की बिक्री कम हो जाती तो वो उन उद्योगों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता। तो वहां जो अमेरिका में एक कानून सा बना हुआ है कि कोई भी हथियार रख सकता है, जो भी उसका एग्जैक्ट हो, तो ये आंकड़े लगभग हैं कि प्रति व्यक्ति तीन हथियार है वहां, एवरेज हर व्यक्ति के पास तीन हथियार है। तब अगर छोटे छोटे बच्चे आर्म से लेस हैं, तो कभी उनका इस तरीके से इस्तेमाल करने की जो खुराफात उनके दिमाग में सूझ जाती है और वो चीजें दिखाई देने लगती हैं। मित्रों, जो संस्कृति की व्याख्या करते हैं जैसे मार्क्सवादी विचारक हैं, वो फिर इसे एक प्रकार से पूंजीवादी संस्कृति की विकृति भी कहते हैं। मतलब वो मान करके चलते हैं कि जो राष्ट्र या जो समाज पूंजीवादी दिशा में आगे बढ़ेगा, कैपिटलिज्म की तरफ जाएगा, उन समाज में एक अलग तरीके की विकृतियां पैदा होंगी। वो समाज हिंसक अधिक होगा, नो डाउट कि वो उपभोक्तावादी समाज तो होगा ही, फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा होगा, उनमें शांति, अंतरूनी शांति नहीं होगी, उस समाज के लोगों में आपसी ईर्ष्या बहुत ज्यादा होगी, उस समाज में स्पिरिचुअलिटी कम होगी। इस तरह से वो अपने ढंग से व्याख्याएं करते हैं जो पूंजीवादी समाज की जो व्याख्या होती है, और नो डाउट कि जो अमेरिका का समाज है वो पूंजीवादी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो हमें हिंसा दिखाई दे रही है, मादक पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन अमेरिका में बहुत ज्यादा है, वो भी एक पूंजीवादी समाज की विकृति मानी जाती है। तो मित्रों, यहां मैंने थोड़ी सी आपको एक सामाजिक पूंजीवादी समाज के बारे में बताया, अमेरिका की संस्कृति के बारे में बताने की कोशिश की, और उसके माध्यम से कि विश्व उदारीकरण के दौर में कैसे अमेरिका का प्रभाव सब तरफ पड़ रहा है, वो कितना उचित है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इसके आधार पर आप इसके बारे में थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो मैंने इस एक घटना के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अब मैं एक दूसरी खबर पर आता हूं, और ये सीधे सीधे आपके सिलेबस की तो बात नहीं है, लेकिन जब हम इंडियन पॉलिटी सिनेरियो की बात करते हैं, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस एंगल को भी जानना चाहिए। देखिए, जब राजनीति की बात होती तो राजनीति का एक पक्ष तो पूरी तरह से सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट, पार्लियामेंट है, उसमें अलग अलग पार्टियां हैं, पक्ष है, विपक्ष है, ये चुनाव हो रहे हैं, ये एक राजनीतिक परिदृश्य है, राइट। लेकिन उसका जो दूसरा परिदृश्य होता है वो भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा न हो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और किसी भी मायने में ये पहले परिदृश्य से कम महत्वपूर्ण नहीं होता, वो है हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन राजनीतिक पार्टियों का स्वरूप क्या है, सांगठनिक स्वरूप क्या है, वो राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से काम करती हैं, उन राजनीतिक पार्टियों की अपनी मूल विचारधारा क्या है, मतलब मूल विचारधारा पॉलिटिकल थिंकिंग। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो केवल पॉलिटिकल थिंकिंग को लेकर के नहीं चलती हैं, उनको तो हर तरह के अपनी चुनाव मैनिफेस्टो में बातें कहनी पड़ती हैं, आर्थिक क्षेत्र में क्या करेंगे, सामाजिक क्षेत्रों में क्या करेंगे, तो पूरी थिंकिंग समझ लीजिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी विचारधाराएं किस तरीके की हैं, इनका आचरण किस तरीके का है, इनका कंडक्ट किस तरह के तरीके का है, कहां कहां इनका अभी सत्ता में आना संभव हो पाया है, आगे ये किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से ये काम करती हैं, इनका फंक्शन, ये सारी चीजें भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ये बात अलग है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मित्रों, अगर ये राजनीतिक परिदृश्य का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं होता तो मान करके चलिए कि कल के AIR न्यूज में इतने विस्तार के साथ पार्टी संगठन के बारे में नहीं बताया गया होता। हालांकि वहां सीधे सीधे नाम न लिया गया हो पार्टी के संगठन का, लेकिन वो खबरें रोजाना हमारे रेडियो AIR न्यूज में होती हैं, चैनल्स की न्यूज में भी होती हैं, चाहे फिर वो दूरदर्शन का न्यूज चैनल हो चाहे वो प्राइवेट चैनल हो। तो यहां आपको दोनों को थोड़ा सा देख करके चलना पड़ेगा और दोनों की फंक्शनिंग को समझना भी पड़ेगा। जैसे न्यूज में आपने सुना कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राइट, और फिर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, और सरकार के जो प्रमुख हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। तो आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि अमित शाह क्या हैं, नरेंद्र मोदी क्या हैं, इनकी सीमा क्या है, अमित शाह की सीमा क्या है, ये दोनों आपस में किस तरीके से काम करते हैं, क्या अमित शाह प्रधानमंत्री हो सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री बीजेपी अध्यक्ष होते हैं और फिर अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनते हैं, या कैसे पार्टी किसको प्रधानमंत्री बनाती है। इसी से जुड़ा हुआ अभी आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए दावेदार तो नहीं, मतलब कह लीजिए कि एक चेहरा बीजेपी को प्रेजेंट करना है कि अगर यूपी में चुनाव में हम जीतते हैं तो कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा, ये भी आपने न्यूज में सुना। उसमें 5-6 लोगों के, एक दो लोगों के नाम थे जिसमें राजनाथ सिंह जी का नाम सबसे ऊपर है कि राजनाथ सिंह जी को वहां मुख्यमंत्री पद के लिए वो सामने ला सकते हैं। अभी राजनाथ सिंह जी हमारे गृहमंत्री हैं, इससे पहले राजनाथ सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी साहब से पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष होने के बाद भी वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, तो क्या ये जरूरी होता है, नहीं जरूरी होता है, तो कौन से सिस्टम काम करते हैं, किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, फिर जो व्यक्ति गृहमंत्री है उसको कैसे उस राज्य में मुख्यमंत्री के दावेदार के लिए भेजा जा रहा है। तो ये जो सारी की सारी जो बारीकियां हैं, ये बारीकियां आपकी समझ में आनी चाहिए जो पार्टी संगठन को समझने से आएगी। आपने और भी चीजें सुनी, जैसे प्रभारी, कांग्रेस के बारे में कहा गया कि गुलाम नबी आजाद को अब उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। साथ ही कहा गया कि कमलनाथ जी को हरियाणा और पंजाब का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। तो ये महासचिव क्या होते हैं, फिर ये प्रभारी महासचिव क्या होते हैं, फिर ये सब सेंटर में बैठे हुए हैं तो फिर इनको राज्यों का दायित्व क्यों दिया जाता है, तो क्या राज्यों के जो अपने नेता होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के लोग होंगे, हरियाणा और पंजाब में भी कांग्रेस के लोग होंगे, तो वहां के लोगों को क्यों नहीं बनाया गया। बाहर के कमलनाथ जी तो मध्य प्रदेश के हैं, गुलाम नबी आजाद जी कश्मीर के हैं, तो अब कश्मीर के लीडर को प्रभारी कहां का बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लीडर को कहां बनाया जा रहा है, हरियाणा और पंजाब का बनाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। फिर आपने न्यूज में यह भी सुना कि अनुशासनात्मक कार्यवाही, आपने देखा ना कि कर्नाटक में जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे इसमें अब कुछ MLA पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात हो रही है क्योंकि उसने क्रॉस वोटिंग की। अभी क्रॉस वोटिंग क्या है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ है, ये क्रॉस वोटिंग क्या है, पार्टी क्या कि अपने ही विधायकों को इस बात के लिए बाध्य कर सकती है कि वो उन्हीं के कैंडिडेट को वोट दे जो पार्टी कहती है, और अगर वो उससे अलग जाकर के मतदान करता है तो उसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं। ये सब के सब पार्टी के हिस्से, याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से नहीं है, ये पार्टी के हिस्से हैं। फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ हमने तो सीएम के कार्यों की प्रशंसा के रूप में वोटिंग की है, क्रॉस वोटिंग की है। तो क्या पार्टी के ही जो मेंबर होते हैं उनको अपनी तरफ से कुछ भी सोचने विचारने की गुंजाइश रही नहीं जाती? वो पूरी तरह से पार्टी के अनुशासन के आधार पर चलने के लिए विवश होते हैं? तो ये ढेर सारे प्रश्न मैंने अभी आपको पार्टी संगठन को लेकर के बताए हैं, जो पूरी की तरह से AIR न्यूज पर बेस्ड था। यहां मैं याद दिलाना चाहूंगा मित्र अपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बैच को कि आप याद कीजिए कि मैंने पूरा एक लेक्चर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके संगठन के बारे में आप लोगों को दिया था, बताया था, समझाया था। तो आप उसी लेक्चर को याद कीजिए तो ये पूरी की पूरी जो न्यूज है आपके सामने स्पष्ट बिल्कुल हो जाएगी। राइट फ्रेंड, तो न्यूज के बारे में इतना ही मित्रों। अब प्रेस क्लिपिंग्स पर मैं आता हूं। आज थोड़ी सी प्रेस क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें बिजनेस स्टैंडर्ड का प्रेस क्लिपिंग्स की जो प्रेस क्लिपिंग्स है मैं समझता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्याम शरण जी के, जो हमारे इससे पहले विदेश सचिव रह चुके हैं, उन्होंने खासकर भारत और अमेरिका के संबंधों में अब जो बदलाव आए हैं उसको लेकर के बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, क्योंकि वो तो खुद इंडियन फॉरेन सर्विस के रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनके पास एक अलग तरीके की समझ है। तो ये आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ेंगे और दूसरे आर्टिकल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपनी अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार उसे देख लेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सभी अपने ईमेल लिखने वाले मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पास एक मेल आया है मयंक कुमार सिंह का, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। उन्होंने लिखा है कि वो जो अभी जो फोर्थ रैंक आई हैं अर्तिका शुक्ला जी, उनसे गए और मिले, मिलने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने स्पेशली ये बात लिखी, ये हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं ये फोर्थ बैच के, कि सर मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि अर्तिका शुक्ला जी ने जितनी भी बातें बताई प्रिपरेशन के लिए तो वो सारी की सारी बातें आप क्लास में बताते हैं, तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हम सब की तैयारी एक बहुत सही दिशा में चल रही है। तो मयंक, इसके लिए बहुत बहुत आपकी आपको धन्यवाद। और स्पेशली खासकर मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा, चाहे वो हमारे क्लास के हैं नहीं हैं, ऑडियो सुनते हैं नहीं सुनते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस इन सब को छोड़ करके, कि जिस स्टूडेंट को भी मौका मिलता है कि वो सिविल सर्विस में सेलेक्टेड कैंडिडेट उनके आसपास है उनसे जाकर मिल सकता है तो मिलना ही चाहिए। आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल हिचक हटा दीजिए, आप जाएंगे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। देखिए, अच्छा इसलिए लगेगा, अदरवाइज तो कोई मिलने जा नहीं रहा था अभी तक, कौन मिलने जा रहा था? अब वो इस लायक हुए, उनके ऊपर एक ठप्पा लग गया, मतलब ISI मार्का जिसको कह लीजिए कि एक ब्रांड मार्का लग गया कि यस यू आर सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो जब वो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इसका मतलब है कि जब आप मिलने जाते हैं तो उनको अपनी विशिष्टता का एहसास कराते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मिला जा सकता है, तो मैं मिलने आया हूं, मान करके चलिए कि उनको अच्छा लगेगा, आपको दुत्कारेंगे नहीं, आपको डांटेंगे नहीं, आपका सम्मान करेंगे, आपको प्यार से आपसे बातें करना चाहेंगे, तो प्लीज डू दैट। तो मित्रों, अब मैं कुछ नाम ले रहा हूं ईमेल लिखने वाले अपने साथियों का, सौम्या चड्डा, विनायक राज, गुरविंदर गोपाल गोपालपुरी पटियाला से, शेष राव उगाले पुणे महाराष्ट्र से, राधिका पंडा, हरिचरण कैवर्त बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, राकेश कुमार बंगलुरू से, रितेश नायक महासमुंद छत्तीसगढ़ से, शिव दयाल, पवन चतुर्वेदी, मनीष झा, रानी राजपूत इंदौर से, अर्जुन सिंह सिसोदिया जोधपुर से, अमन तिवारी सतना से, अजय सखारे रामटेक महाराष्ट्र से, मोहित कुमार हापुड़ उत्तर प्रदेश से और रूपाली होशंगाबाद से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही ये आज का डेली ऑडियो गाइडेंस यही समाप्त होता है। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।